डिल थे डैश वैज्ञानिक पद्धति। 19वीं सदी के अंत तक यूरोप बौद्धिक क्षेत्र में उद्वेलित हो रहा था। आज जिन विषयों को हम सामाजिक विज्ञान की संज्ञा देते हैं, उनका गठन इसी युग में हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का मानवीय अध्ययन में प्रयोग गहरे प्रयास का परिणाम कहा जा सकता है। मार्क्स से इस प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, किंतु यहाँ हमारे विचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति विल्हेलम डिल थे, 1823 से 1911 है। डिल थे ही वह व्यक्ति था जिसने रांके के ऐतिहासिक तत्व को गंभीर रूप में लिया और इतिहास को वास्तव में सामाजिक विज्ञान बनाने की चेष्टा की। डिल थे रांके को बर्लिन से जानता था और वह इस बात को स्वीकार करता था कि इतिहास विशिष्ट घटनाओं की कहानी है तथा यह है कि उसमें प्रत्येक युग का अपना महत्व होता है। रांके के अनुयायी प्रायः विशिष्ट घटनाओं की पुनर्रचना से ही संतुष्ट हो गए थे, जबकि डिल्थे ने रांके के अन्य सिद्धांत के निहित अर्थों को ढूंढा। क्या किसी प्रदत्त युग का अर्थ इसके बाहर नहीं ढूंढा जा सकता है? क्या यह अर्थ इस युग के अंदर ही संभव है, और यदि संभव है तो कैसे? रांके एक अभ्यासी इतिहासकार था। अपने चिंतन में उसने सबसे अधिक ध्यान आलोचनात्मक विधि को प्रसिद्ध परिशुद्ध बनाने पर रखा। अपने चिंतन में उसने सबसे अधिक ध्यान आलोचनात्मक विधि को परिशुद्ध बनाने पर रखा। अपने प्रलेखों का उपयोग करते समय उसे भूत के वर्णन का संतोषजनक माध्यम मिला, किंतु वह कोई दार्शनिक नहीं था जिसे ऐतिहासिक चिंतन में उपयोगी उपयुक्त विधि की प्राप्ति में अथवा चिंतन की अन्य प्रणालियों से इसकी तुलना में रुचि हो। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बीको द्वारा प्रस्तुत विधि में प्राकृतिक विज्ञान के समान ही परिष्कृत किंतु उनसे पर्याप्त भिन्न एक नए विज्ञान के मानदंडों के संस्थापन के दावे को डिल्थे के पूर्व कोई भी उत्तराधिकारी नहीं मिला। दुर्भाग्य से डिल्थे की वह रचना अपूर्ण ही रह गई जिसे वह ऐतिहासिक ज्ञान की समीक्षा के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। हमें उसकी कृति के कुछ अंश मिले हैं और उन अंशों के भी कुछ भाग ही अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। डिल्थे के तीन महत्वपूर्ण मान्यताएं थी। इतिहास, पहला, इतिहास समस्त मानवीय अध्ययनों का सूत्र रूप है। इतिहास समस्त मानवीय अध्ययनों का सूत्र रूप है। सर्वप्रथम डिल्थे ने प्रकृति के अध्ययन और मनुष्य के अध्ययन अर्थात प्राकृतिक विज्ञान और मानवीय विज्ञान में अंतर स्पष्ट किया। इस संबंध में उसकी तथा बीको की मान्यता में सादृश्य है। मनुष्य प्रकृति के अध्ययन की अपेक्षा मनुष्य तथा उसकी कृतियों का अध्ययन अधिक स्पष्ट तथा अधिक लाभप्रद रूप में कर सकता है। यह मनुष्य की विशेषता है कि वह समय प्रक्रिया में युग विशेष में ही रहता है। इतिहासकार इस मनुष्य का अध्ययन करता है। डिल्थे की रुचि मनुष्य के सार्वजनिक कार्य व्यापारों तथा कृतियों में थी। उसका यह निष्कर्ष था कि यदि इसका भली भांति अध्ययन किया जाए तो इतिहास द्वारा ही मनुष्य को समझने का सूत्र प्राप्त होता है। अर्थात उसका यह कहना कि ज्ञान के दो मार्ग हैं, प्रकृति के ज्ञान के लिए विज्ञान और मानव संबंधी ज्ञान के लिए इतिहास। मनुष्य का प्रमाणिक अवबोध प्रदान करने का दावा करने वाली अनशिखा शाखा के समसामयिक विकास के परिपेक्ष में साहसिक अभिकथन और भी महत्वपूर्ण है। डिल्थे के अनुसार इतिहास ही इस प्रकार के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि मनुष्य को अथवा संस्था अथवा समाज जिसका अध्ययन अभिप्रेत है, एक जीवन प्रक्रिया के बीच में स्थित है, वह स्थिर नहीं है। और साथ ही इतिहासकार भी, जो कि दृष्टा है तथा इतिहास का अध्ययन और लेखन कर रहा है, वह भी समान रूप से जीवन प्रक्रिया के बीच में स्थित है। मनुष्य मूलतः ऐतिहासिक जीव है। दूसरा, आत्म प्रकाशनीय वस्तु के रूप में जीवन और इतिहास का अर्थ। डिल्थे का विश्वास था कि जीवन अर्थपूर्ण है, किंतु इसका कोई वाह अर्थ नहीं है। वैसा नहीं जैसा कि ईसाइयों ने ईश्वर या यूनानियों ने भाग अथवा हीगल ने तर्क के साथ जोड़ा है। यह तो स्वयं में ही अर्थपूर्ण है। इस अर्थ की किसी अमूर्त रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती। प्रत्येक युग का अपना अर्थ ही मानव मस्तिष्क द्वारा निर्मित प्रत्येक वस्तु, चाहे धर्म हो या तकनीकी ज्ञान, काव्य रचना हो अथवा पेड़ काटना के अंतर संबंधों को व्यक्त करता है। मनुष्य अपने मस्तिष्क से प्रभावित विश्व की स्वयं रचना करता है। साथ रहने की प्रवृत्ति रांखे के शब्दों में तसु जा मेनहंग ही अर्थपूर्णता है। डिल्थे इस विचार का श्रेय वाल्टेयर को देता है कि संपूर्ण युग समजातीय होता है। हमने इतिहासकार का संदर्भ से संबंध बताते हुए इसकी चर्चा की थी। समय में विकास के प्रति रुचि भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। डिल्थे इसे हर्डर से संबंध करता है। युग का निर्माण बीते हुए युग के ऊपर होता है, अतः वर्तमान भूत से संबंध है और अर्थपूर्ण ढंग से संपूर्ण भूत को अपने में समेटे हुए है। यही कारण है कि इस अंतर संबंध को समझकर ही मनुष्य सही अर्थ को समझ सकता है। यह ऐतिहासिक प्रक्रिया का मूलभूत धर्मनिरपेक्षीकरण है। इसका अर्थ भी पूर्णतया अपने आप में व्यक्त है, जिसका बाहर से कोई संबंध नहीं। इतिहास के अध्ययन के संबंध में डिल्थे एक मुख्य अध्याय जोड़ता है, जिसे ऐतिहासिक ज्ञान के स्वभाव की संज्ञा दी जाती है। ऐतिहासिकता का यह नया आयाम है जो आज भी इतिहास दर्शन की प्रमुख समस्या है। रांके ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिछली दर्शन शाखाओं ने बाह्य मूल्यों और सिद्धांतों को लेकर ही इसका उल्लेख किया था। डिल्थे ने इस समस्या का इतिहासवाद के एक अंश के रूप में समाधान किया। ऐतिहासिक वास्तविकता व्यक्ति तथा व्यक्तियों द्वारा निर्मित विश्व के बीच की अंतःक्रिया है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डिल्थे के अनुसार इतिहास में व्यक्ति प्रमुख मूल्य है, एक मूलभूत इकाई है। इन्वर्टेड कॉमा स्टॉप। ऐतिहासिक विश्व मस्तिष्क प्रभावित अथवा मस्तिष्क निर्मित विश्व है। अतः इतिहास की विषय वस्तु वह सब कुछ है जो मनुष्य ने किया है। ये मस्तिष्क की अभिव्यक्तियां हैं, जिन्हें डिल्थे निर्वैयक्तिक कहता है। इनकी रचना मस्तिष्क से होती है, किंतु बाद में इनका अपना अस्तित्व बन जाता है। इनका विस्तार मुख भावों से लेकर वैदिक संग्रहों तक होता है। मन की इन निर्वैयक्तिक अभिव्यक्तियों से ही किसी युग का निर्माण होता है। किसी समय विशेष से संबंध इन अभिव्यक्तियों के योग में इस समय की आत्मा का प्रदर्शन होता है। इनकी अंतर संबंधता ही अर्थपूर्ण समष्टि को बनाती है। मनुष्य के मस्तिष्क की ही उपज होने पर भी ये निर्वैयक्तिक सत्ताएं अपने में तथा अपने साथ रहने वाले मनुष्यों को भी प्रभावित करती हैं। इतिहासकार का कार्य इस मस्तिष्क से प्रभावित विश्व में ही रहता है। अपने अभिप्राय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए डिल्थे आत्मजीवनी की व्याख्या करता है, जिसे वह मनुष्य द्वारा अपने अतीत को समझने का प्रयास करता है। अतीत में स्थित महत्वपूर्ण वस्तुओं की स्मृति, संस्मरण पत्र, दैनंदिनी उसके मस्तिष्क की अन्य अभिव्यक्तियों में सम्मिलित है। इस प्रकार वह अपने भूत को समझने में सफल होता है। आत्मजीवन का यह सिद्धांत, जो कि व्यक्तिगत स्मृतियों के स्थान पर तथ्यों से पुष्ट होता है, तथ्यों पर आधारित होने से यह निर्वैयक्तिक भी हो जाता है। जीवनी के विस्तरण द्वारा हमें डिल्थे के ऐतिहासिक अध्ययन के विचार को समझना है। उपयुक्त चयन स्वयं में पूर्ण नहीं है, किंतु ये कम से कम डिल्थे ने जीवन के अर्थ को ऐतिहासिक अध्ययन द्वारा समझने का जो प्रयास किया, उसका कुछ आभास तो अवश्य देते हैं। डिल्थे के इतिहास के विकास संबंधी चिंतन में निहित अर्थ की व्याख्या आज तक निरंतर की जा रही है। वह पहला व्यक्ति है जिसने इस प्रश्न को उठाया कि ऐतिहासिक ज्ञान का निश्चित स्वरूप क्या है। यह इतिहासकारों द्वारा अब तक विकसित कार्यविधि के समान प्रश्न इतिहास लेखन का प्रश्न से कुछ और अधिक है। जैसा कि हम देख चुके हैं, इसे परिपक्व रूप तो रांके ने दिया। उपरोक्त नए प्रश्न को क्रोचे, कालिंगवुड तथा हाल में विश्लेषणात्मक दार्शनिकों द्वारा विस्तृत व्याख्या होनी थी। अंत में डिल्थे विक्को की ऐतिहासिक पद्धति के विशिष्ट स्वरूप के प्रश्न को लेता है और यह कहने का प्रयत्न करता है कि इतिहास आत्म प्रकाशनीय है। अतीत के प्रति हर्डर की संवेदना की अवधारणा की व्याख्या इस रूप में की जाती है कि संपूर्ण इतिहास मन की अभिव्यक्तियां हैं। रांके के प्रलेखों के परिष्कृत उपयोग को उनकी बौद्ध गम्यता के गंभीरतर संदर्भ में रखा जाता है, क्योंकि इसमें निर्वैयक्तिक रूप से वो तथ्य पाए जाते हैं जिनके द्वारा मनुष्य स्वयं को, संपूर्ण मानव को समझ सकता है। यह विचार कि मस्तिष्क प्रभावित शब्द में निर्वैयक्तिकता निहित है इतिहास में एक भिन्न चिंतन पद्धति को उपलक्षित करती है। इस विचार को एक विशेष अर्थ में वैज्ञानिक कहा जा सकता है। यह उस सतही विचार पर अतिक्रमण करता है कि विज्ञान एक अनुभव सिद्ध पद्धति है और विज्ञान में एकमात्र पर्यवेक्षण ही प्रमुख है और इसके नियम पर्यवेक्षण पर ही आधारित हैं। इस शताब्दी के अंत तक प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में ही यह अनुभव किए जाने लगा कि यह पद्धति इतनी सरल नहीं है। पोइंकेर के अनुसार वैज्ञानिक एक प्राकल्पना से प्रारंभ करते हैं और वैज्ञानिक ज्ञान तथ्य और चिंतन के बीच निरंतर अंतःक्रिया है। साथ ही मात्र भौतिक कारण के विचार की सीमाएं भी स्वीकार की जाने लगी। सापेक्षता तथा परमात्रा के सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञान को 19वीं सदी में इसकी जो कल्पना थी उससे कहीं जटिल बना देते हैं। डिल्थे व्यापक भौतिक क्रांति से प्रभावित था। इस क्रांति में प्राकृतिक विज्ञान की स्वीकृत जटिलताएं इस निश्चय कथन से संगत बैठती थी कि मानविकी विज्ञान भी संभव है। वेबर आदर्श प्रकारों की अवधारणा 1870 से प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों से ही सामाजिक विज्ञान के विषयों का समारंभ होता है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि मानव जीवन की व्याख्या निर्वैयक्तिक और व्यवस्थित प्रणाली से की जा सकती है। मार्क्स ने दृढ़ विश्वास के साथ लिखा तथा उसने अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र दोनों के विकास को प्रभावित किया। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रकारों की अवधारणा का प्रतिपादन किया। यदि मनुष्य का संपूर्ण रूप में सरलता से अध्ययन नहीं किया जा सकता है तो मानव अस्तित्व के विभिन्न वर्गों को समष्टि से निकालकर अलग अलग समझा जा सकता है। इस प्रकार से मनुष्य के आर्थिक पक्ष को अलग किया जा सकता है और मनुष्य का आर्थिक जीव के रूप में अर्थात जब वह आर्थिक कारणों से प्रभावित होकर कार्य करता है अलग से अध्ययन किया जा सकता है। इसी तरह सत्ता के लिए मनुष्य की क्षुधा राजनीति में व्यक्त होती है और उसका अलग से अध्ययन किया जा सकता है, जैसे कि मेकियावेली ने दी प्रिंस में तथा कौटिल ने अर्थशास्त्र में किया है। किंतु इन्हें मनुष्य का मनुष्य के रूप में विवरण न मानकर अपितु केवल आंशिक मनुष्य का विवरण मानना चाहिए। वेबर ने मनुष्य को उसकी संपूर्णता में समझने में जो बाधा है उसका यह समाधान दिया। किंतु एक गंभीर प्रश्न फिर भी शेष रह जाता है कि क्या मनुष्य इन विभिन्न भागों का योग मात्र है। इतिहासवादी इससे असहमत हैं। वेबर की मुख्य रुचि समाजशास्त्र में थी, जिसमें मनुष्य का सामाजिक जीव के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह मनुष्य को उसके सामाजिक अस्तित्व तथा उसकी संपूर्ण अंतर्संबद्धता में समझने के प्रयास के रूप में इतिहास के सबसे निकट है। इस दिशा में भी मार्क्सवाद ने प्रोत्साहन दिया था। उसने मनुष्य की परिभाषा वर्गों के आधार पर की और यह दावा किया कि मनुष्य वर्ग के सदस्य की तरह सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और उनके समान मूल्य होते हैं। मनुष्य का समाज के सदस्य के रूप में अध्ययन का यह प्रयास एक सीमा तक इतिहासकार भी करते हैं। इसी सादृश्य के कारण इतिहास और समाजशास्त्र एक दूसरे का अति व्यापन करते हुए दृष्टिगत होते हैं और वस्तुतः जर्मनी में इतिहास ही समाजशास्त्र बन जाता है। इस प्रसंग में प्रतिमान ढूंढे जाते हैं तथा किसी विशेष सामाजिक परिवेश में मनुष्य के कार्य व्यापार के विषय में सामान्यीकरण की चेष्टाएं की जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से कम सीमित है, क्योंकि किसी एक पक्ष को यह पूर्ण अस्तित्व से उतना अलग नहीं करता जितना अर्थशास्त्र या राजनीति करते हैं। समाज में सभी का समावेश होता है और मनुष्य का अस्तित्व समाज के बाहर नहीं है। उपरोक्त विवरण हमें डिल्थे तथा उसके योगदान के तीसरे निहितार्थ के निकट पहुंचाता है। वह मानव समाकुष्ट में सामाजिक विज्ञान के निर्माण का भी प्रयास कर रहा था, किंतु वह इसमें असफल रहा। वह अपने प्रस्तावित ग्रंथ को कभी पूरा नहीं कर सका और इतिहास की स्थापना अन्य उपयुक्त विषयों के समान सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं हुई। वेबर के समाधान को स्वीकार करने पर इतिहास में मनुष्य का ऐतिहासिक जीव के रूप में अध्ययन होता है, अर्थात उस मनुष्य के रूप में जो कि समय की प्रक्रिया में है। परंतु समस्या यह है कि इसमें सभी कुछ का समावेश हो जाता है। इतिहास समाजशास्त्र की तरह मनुष्य को सामाजिक अंतर संबंधों के साथ ही नहीं देखता, अपितु उसको भी समय के प्रवाह में रखकर निरंतर परिवर्तनशील विकास में भी देखता है। समाजशास्त्री यह कह सकता है कि अर्थशास्त्री और राजनीति शास्त्र मनुष्य को कुछ ही अंशों में देखते हैं, किंतु इतिहासकार समाजशास्त्री की भी यह आलोचना करता है। समाजशास्त्री मनुष्य को समय के प्रवाह से अलग करके देखता है, वह समय को स्थिर कर देता है और यही कारण है कि यह अध्ययन यथार्थ से दूर हो जाता है। मनुष्य समय के प्रवाह में जीता है और उसके जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह गतिशील है। मनुष्य ऐतिहासिक और इतिहास मनुष्य का अध्ययन है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि डिल्थे सफल नहीं हो सका। वह मनुष्य के एक पक्ष तक ही अपना अध्ययन सीमित करता, यह संभव नहीं था और साथ ही वह पूर्ण को नहीं पकड़ पाया। कहने का यह अभिप्राय नहीं कि उसका प्रयास त्रुटिपूर्ण था। उसने प्राकृति और मानवीय विज्ञान के बीच जो मूलभूत अंतर बताया वह उचित था। यह भी ठीक है कि उसने इतिहास को निर्वैयक्तिक अध्ययन बनाने की चेष्टा की। आधुनिक इतिहास का विकास प्राकृतिक विज्ञानों के साथ हुआ है तथा इसने सदैव ठोस अविकार तथ्यों में रुचि रखी है। इतिहास कल्पना नहीं है, इतिहास की पुस्तक उपन्यास से भिन्न है। यह वास्तव में क्या घटा इसे समझने का प्रयास है। इसे एक प्रकार की निर्वैयक्तिकता की प्राप्ति का प्रयास कहना चाहिए। इस महान बौद्धिक क्रांति ने डिल्थे भी जिसका एक भाग था 19वीं शताब्दी के यूरोप की सरल मान्यताओं को चुनौती दी। प्रकृति अब विवरणीय नहीं रही और मनुष्य की क्रियाओं को अब संदेहपूर्ण तथा प्रश्न सूचक ढंग से देखा जाने लगा। मार्क्स ने यह सुझाया कि मनुष्य के विचारों और क्रियाओं का आर्थिक संदर्भ में समझना चाहिए और फ्रायड ने इससे आगे यह कहा कि सदैव कोई निश्चित कारण इन क्रियाओं के साथ नहीं होता, अपितु मनुष्य कई ऐसे कार्य करता है जिसका निर्देश उसे अपने अचेतन से मिलता है और वह स्वयं अपने उन कार्यों को नहीं समझ पाता। मनुष्य के कार्यों का वर्णन मात्र अब अर्थपूर्ण नहीं रहा। पाश्चात्य मनुष्य ने विश्लेषण के युग में प्रवेश किया जहां निहित उद्देश्यों को ढूंढा जाने लगा और जहां ऊपरी अर्थों के सामने प्रश्न सूचक चिन्ह दिखने लगे। इससे 19वीं शताब्दी के आत्मविश्वास को गहरा आघात पहुंचा तथा इसने इस मान्यता को भी हिला दिया कि पाश्चात्य मनुष्य धीरे धीरे निरंतर संस्कृति के उच्चतर स्तर पर पहुंच रहा है। साथ ही जब एशियाई देश जापान ने 1904 में रूस को पराजित किया तो यह विश्वास भी हिल गया कि यूरोप की शक्ति सर्वोपरि है। यूरोप में ही बिना कांग्रेस के द्वारा स्थापित व्यवस्था में संकट पैदा हो गया। बिस्मार्क की संधि व्यवस्था के दुर्गुण स्पष्ट दिखने लगे। शेष आशावाद को प्रथम विश्व युद्ध ने छिन्न भिन्न कर दिया। निष्कर्ष 19वीं शताब्दी में पिछले युग के रचनात्मक तत्वों के सम्मिश्रण से आधुनिक इतिहास लेखन का बौद्धिक रूप प्रकट हुआ एवं मानव के संपूर्ण अतीत के वर्णार्थ इतिहास में क्लासिक्स लिखे गए। विश्वविद्यालय के कला संकायों में इतिहास का वर्चस्व स्थापित हुआ। अब इतिहास जनमानस का प्रिय विषय बन गया। फ्रांस की राज क्रांति से प्राचीन व्यवस्था की समाप्ति और राजा के जीवन का अंत करके नवीन व्यवस्था की स्थापना हुई। इसके पश्चात नेपोलियन सत्ता हथियाने और अल्पकाल के लिए ही सही अपनी इच्छा को संपूर्ण यूरोप पर स्थापित करने में सफल हुआ। इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानव में अपना भाग निर्माण करने की योग्यता है। यह एक नया अनुभव था, लेकिन नेपोलियन के पतन के पश्चात फ्रांस की दृष्टि क्रांति जनित अपने घावों पर गई। विजेताओं ने अपनी समस्याओं को समाधान प्राचीन राजतंत्र की प्रत्यास्थापना में ढूंढना प्रारंभ किया। इससे अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए। क्रांति की उपलब्धि प्राचीन व्यवस्था की पुनः स्थापना की अनुमति नहीं दे सकती थी। दूसरी ओर रूढ़िवादी क्रांति की क्रूरताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने लगे तो उदारवादी कहने लगे कि क्रांति के प्रारंभिक कार्य ठीक थे। साथ ही वे इतिहास में ढूंढ ढूंढ कर दिखाने लगे कि फ्रांस में क्रांति के कारण पहले से ही विद्यमान थे। दीर्घकाल से होते आ रहे परिवर्तन के तत्वों एवं फ्रांसीसी इतिहास के निरंतर के विश्लेषण से उदारवादी फ्रांस की राजक्रांति की अच्छाइयों को सुरक्षित रखने के साथ फ्रांस के लोगों की ऐतिहासिक दृष्टि से सोचने की दिशा में सोचने की शिक्षा देने में सफल हुए। संपूर्ण यूरोप में वैचारिक उथल पुथल प्रारंभ हो चुकी थी, जिसका इतिहास लेखन पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। क्रांति के प्रत्युत्तर स्वरूप इंग्लैंड ने अपने विगत की अच्छाइयों को प्रत्यक्ष करके ब्रिटिश श्रेष्ठता को प्रकट किया। 19वीं सदी के मध्य में मैकाले ने विगत के विषय में लिखकर ब्रिटिश विकास के उदाहरण द्वारा नैतिकता की शिक्षा देने का प्रयास किया। इंग्लैंड एवं फ्रांस में इतिहास साहित्य एवं राजनीति के क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ। क्रांति की एक समानांतर प्रतिक्रिया के रूप में वहां स्वच्छंदतावाद का जन्म हुआ, जिसके अंतर्गत मानव को अनुभूति युक्त मानकर मध्यकालीन गुणों की सराहना करके रोमांटिक उपन्यास लिखे गए। परंतु इस आंदोलन के क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा का उदय न होकर यह केवल अच्छी कहानियों तक ही सीमित रहा। उधर फ्रांसीसी सेनाओं को पलायित करने के प्रयास में जर्मन राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। जर्मनी में अतीत में देखने को कुछ नहीं था, इसीलिए यहाँ अपेक्षाकृत अधिक ऐतिहासिक चेतना का विकास हुआ। 19वीं सदी में जर्मन विश्वविद्यालय संपूर्ण यूरोप में विचार विमर्श में के सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। इस समय जबकि अन्य राष्ट्र प्राचीन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न कर रहे थे, वहाँ जर्मनी में नए प्रयोग हो रहे थे। वास्तव में आधुनिक इतिहास लेखन का प्रारंभ जर्मनी में हुआ। इसका प्रतिनिधित्व हर्डर ने किया। उसने सांस्कृतिक एकता को महत्व देते हुए यह स्थापना की कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अद्वितीय चेतना होती है। इस समय परिकल्पनात्मक दर्शन का प्रारंभ हीगल ने और इतिहास लेखन में रांके ने नए मानदंडों को स्थापित किया। रांके के सभी ग्रंथ शोधों पर आधारित थे। उसने न केवल अनेक देशों के आधुनिक युग पर ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे, बल्कि वृद्धावस्था में सार्वदेशिक इतिहास की रचना प्रारंभ की। रांके इतिहास लेखन के लिए स्रोतों की समीक्षा आवश्यक मानता था। वह गोष्ठियों में इतिहासकार बताता था और अभिलेखागारों में इतिहास लिखता था। उसकी इतिहास लेखन की विधा शैक्षणिक इतिहासकारों के लिए मानदंड के रूप में स्थापित हुई। इस समय जर्मनी में दार्शनिक भी इतिहास के स्वरूप पर चर्चा कर रहे थे, जिनमें हीगल का नाम अग्रणीय है। उसकी ख्याति आदर्शवादी दार्शनिक के रूप में स्थापित हुई। आदर्शवाद इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य जो कुछ देखता है अथवा अनुभव करता है वह चरम यथार्थ नहीं है। इन रहस्यों का धार्मिक उत्तर ईश्वर में है। केवल दार्शनिक इन रहस्यों का उत्तर मन एवं विवेक, जिसे हीगल विश्वात्मा कहता है, में ढूंढता है। हीगल आत्मा एवं प्रकृति में स्पष्ट भेद करता है। विवेक एवं स्वातंत्र्य के द्वारा चरम सत्य की अभिव्यक्ति मानव मन में होती है। हीगल ने अनुभूति की ईसाई अवधारणा के इतिहास में अपनाकर उसे दार्शनिक व्यवस्था का ढंग बना दिया, जिसकी मूल संकल्पना यूनानी है। परिणामतः दर्शन का ऐतिहासिकरण हो गया। इतिहास का वह क्षेत्र हो गया जहां विश्वात्मा का वास्तविकरण हो जाता है। हीगल के अनुसार विश्वात्मा सदा अंतरस्थ है। वह सदा ऐतिहासिक मन के संपर्क में रहता है, किंतु अधिकांश इतिहासकार इसे स्वीकार नहीं करते। चरम तत्व का ही इतिहास में विकास होता है। यह मानव तथा सत्य को स्थैतिक मानने वाली पूर्ववर्ती दार्शनिक अवधारणा से सर्वथा भिन्न विचार था। हीगल की आलोचना में कहा गया कि उसने अपने दार्शनिक प्रकारों का इतिहास के निर्धारण में प्रयोग किया है। हीगल ने निम्न मूल प्रश्नों पर विचार किया। पहला, चरम सत्य की प्रकृति, ऐतिहासिक प्रक्रिया की प्रकृति और उनके पारस्परिक संबंध। दूसरा, व्यक्ति का चरम सत्य तथा सामाजिक संस्थाओं, विशेषकर राज्य से उसका संबंध। इतिहास एवं दर्शन के समन्वय से हीगल यह स्थापित करता है कि संपूर्ण इतिहास विवेकपूर्ण है, वह अर्थपूर्ण अथवा कम से कम बोधगम्य है। हीगल के सशक्त स्वर से अर्थपूर्ण इतिहास की मांग करने वालों को बल मिला, किंतु इस प्रकार में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि यदि सभी विवेकपूर्ण हैं तो आत्मा की सार वस्तु कहाँ है? हीगल के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता समाज राज्य की सेवा की स्वतंत्रता है। निष्कर्षतः हीगल का सबसे बड़ा योगदान है कि उसने दर्शन को इतिहास के सम्मुख खड़ा किया। वैसे हीगल की सर्वाधिक ख्याति उसके द्वंद्वात्मक विचारों के कारण है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध के यथार्थवादी युग में यूरोपीय चिंतन में अनेक परिवर्तन हुए। इस समय वैज्ञानिक चिंतन पद्धति का बोलबाला था और सभी मानवीय अध्ययनों पर इसके प्रयोग के गंभीर प्रयास किए जा रहे थे। एक ओर डार्विन के विकासवाद की खोज ने विज्ञान जीव विज्ञान में ऐतिहासिक परिवर्तन की अवधारणा की पुष्टि की, इससे संपूर्ण मानव ज्ञान के ऐतिहासीकरण की संभावना प्रकट हुई। परंतु इस प्रक्रिया में अधिकांश लोग इतिहास के विज्ञान होने की संभावना पर विचार करने लगे। दूसरी ओर यह विचार किया जाने लगा कि इतिहास इतिहास है अथवा सामाजिक विज्ञान। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक था कार्ल मार्क्स। उसने हीगल के द्वंद्वात्मक विचार को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। उसने अपने भौतिकवादी दर्शन को हीगल के आदर्शवादी दर्शन के प्रतिपक्ष के रूप में प्रस्तुत किया। वास्तव में ऐतिहासिक संदर्भ में मनुष्य को समझने के लिए उत्पादन और विनिमय के साधनों को समझना आवश्यक है। मनुष्य अपने जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का जिस तरह उत्पादन करता है इसी से उसके सामाजिक ढांचे और विचारों का स्वरूप निर्मित होता है। मार्क्स के इस भौतिकवादी विचार से इतिहास विभिन्न वर्गों के संघर्ष के रूप में दृष्टिगत हुआ। मार्क्स की मान्यता थी कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होने के बाद एक कल्पित आदर्शवाद की स्थिति आएगी, जबकि वर्ग रहित समाज होगा। उसने मनुष्य और समाज के वैज्ञानिक अध्ययन को अपने ग्रंथ दास कैपिटल में प्रस्तुत किया। मार्क्स कोई दार्शनिक नहीं था। शास्त्र व्यवस्था की दृष्टि से मार्क्स का कोई विशेष योगदान नहीं है। यह अवश्य है कि अब तक कोई भी गंभीर इतिहासकार किसी भी समाज के उद्देश्यों से आर्थिक कारणों को पृथक नहीं कर सका। रांके के उत्तराधिकारियों को भी मार्क्स के विचारों के संदर्भ में समझा जा सकता है। अपने गुरु के साक्ष्यों पर आधारित इतिहास के आंदोलन में भाग लेते हुए भी इन लोगों ने कुछ अंश तक मार्क्स के विचारों को अपनाया। वे अपने को वैज्ञानिक इतिहासकार मानते थे और जर्मनी के बाहर इन लोगों का बहुत प्रभाव पड़ा। मूलतः यह आंदोलन इस मान्यता पर आधारित था कि रांके ने जिस आलोचनात्मक पद्धति का निर्देश दिया
देखिए सर, अपने आप रिकॉर्ड होने लगा ना।
अपने गुरु के साक्ष्यों पर आधारित इतिहास के आंदोलन में भाग लेते हुए भी इन लोगों ने कुछ अंश तक मार्क्स के विचारों को अपनाया। वे अपने को वैज्ञानिक इतिहासकार मानते थे और जर्मनी के बाहर इन लोगों का बहुत प्रभाव पड़ा। मूलतः यह आंदोलन इस मान्यता पर आधारित था कि रांके ने जिस आलोचनात्मक पद्धति का निर्देश दिया वास्तव में वह वैज्ञानिक थी, और इसे अपनाने से यह वर्णित किया जा सकता है कि अतीत यथार्थ में कैसा था। यहीं से इतिहास एक व्यवसाय के तरह शुरू हुआ। इंग्लैंड में रांके का अनुकरण लॉर्ड एक्टन ने किया और आधुनिक कैम्ब्रिज इतिहास के रूप में 12 भागों में इतिहास की रचना की। एक्टन के बाद उसी विश्वविद्यालय में जेबी क्यूरी ने वैज्ञानिक इतिहास की प्रकृति का पुनरावलोकन किया, लेकिन विज्ञान में उसका अभिप्राय निर्वैयक्तिकता तथा अपरिवर्तनीय पद्धति से था। उसने प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान के अध्ययन में निहित सैद्धांतिक नियमों को सर्वथा भिन्न स्वीकार करने का आग्रह किया। वैज्ञानिक इतिहास का यह विचार, जो विज्ञान तथा इतिहास दोनों के स्वरूप के अशुद्ध बोध पर आधारित था, अस्थायी सिद्ध हुआ। लेकिन इसी समय डिल्थे ने रांके के ऐतिहासिक तत्व को गंभीर रूप में लिया और इतिहास को वास्तव में सामाजिक विज्ञान बनाने का प्रयत्न किया। वह यह मानता था कि इतिहास विशिष्ट घटनाओं की कहानी है और उसमें प्रत्येक युग का विशिष्ट महत्व होता है। डिल्थे ने रांके के अन्य सिद्धांतों के निहित अर्थों को ढूंढा। उसने 3 महत्वपूर्ण विचारों की स्थापना की। सर्वप्रथम उसने प्राकृतिक विज्ञान तथा मानवीय विज्ञान में अंतर स्पष्ट किया। उसका विश्वास था कि मानव प्रकृति के अध्ययन की अपेक्षा मनुष्य तथा उसकी कृतियों का अध्ययन अधिक स्पष्ट और लाभकारी है। डिल्थे की रुचि मनुष्य के सार्वजनिक कार्य, व्यापारों तथा कृतियों में थी। उसका निष्कर्ष था कि यदि मनुष्य की रचनाओं का भली भांति अध्ययन किया जाए तो इतिहास द्वारा ही मनुष्य को समझने का सूत्र प्राप्त होता है। ज्ञान के दो मार्ग हैं, प्रकृति ज्ञान के लिए मानव विज्ञान और मानव संबंधी ज्ञान के लिए इतिहास। मनुष्य मूलतः ऐतिहासिक जीव है। डिल्थे की दूसरी मान्यता थी कि जीवन अर्थपूर्ण है, परंतु इसका कोई बाह्य अर्थ नहीं है, जैसा कि ईसाइयों ने ईश्वर या यूनानियों ने भाग्य अथवा हीगल के तर्क के साथ बताया है। यह तो स्वयं में अर्थपूर्ण है। प्रत्येक युग का अपना अर्थ ही मानव मस्तिष्क द्वारा निर्मित प्रत्येक वस्तु के अंतर संबंधों को व्यक्त करता है। मनुष्य अपने मस्तिष्क से प्रभावित विश्व की स्वयं रचना करता है। डिल्थे वाल्टेयर के इस विचार को मानता था कि संपूर्ण युग समजातीय होता है। अतः वर्तमान हमेशा अतीत से संबंध होता है और अर्थपूर्ण ढंग से समस्त अतीत को अपने में समेटे हुए है। डिल्थे के तीसरी मान्यता को ऐतिहासिक ज्ञान के स्वभाव की संज्ञा दी गई है, जो आज भी इतिहास दर्शन की प्रमुख समस्या है। रांके ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया। डिल्थे के अनुसार ऐतिहासिक वास्तविकता व्यक्ति तथा व्यक्तियों द्वारा निर्मित विश्व के बीच की अंतःक्रिया है। उसके अनुसार इतिहास में व्यक्ति प्रमुख मूल्य है, एक मूलभूत इकाई है। अतः इतिहास की विषय वस्तु वह सब कुछ है जो मनुष्य ने किया है। ये मनुष्य के मस्तिष्क की अभिव्यक्तियां हैं, जिसे डिल्थे निर्व्यक्तिक कहता है। इनकी रचना मस्तिष्क में होती है और बाद में इनका अपना अस्तित्व बन जाता है। मन की इन निर्व्यक्तिक अभिव्यक्तियों से ही किसी युग का निर्माण होता है। इतिहासकार का कार्य मस्तिष्क से प्रभावित इस विश्व को समझना है। डिल्थे के इतिहास के विकास संबंधी चिंतन में निहित अर्थ की व्याख्या आज तक निरंतर की जा रही है। वह पहला व्यक्ति था जिसने इस प्रश्न को उठाया कि ऐतिहासिक ज्ञान का निश्चित रूप क्या है। डिल्थे विवेको के अनुसार यह स्वीकार करता था कि इतिहास आत्म प्रकाशनीय है। अतीत के प्रति हर्डर की संवेदना की अवधारणा की व्याख्या इस रूप में की जाती है कि संपूर्ण इतिहास मन की अभिव्यक्तियां हैं। रांके के द्वारा प्रलेखों के परिष्कृत प्रयोग को उनकी बोधगम्यता के गंभीरतम संदर्भ में रखा जाता है, क्योंकि इसमें निर्व्यक्तिक रूप में वो तथ्य पाए जाते हैं जिनके द्वारा मनुष्य स्वयं को संपूर्ण मानव समझ सकता है। इसी क्रम में मैक्स वेबर ने आदर्श प्रकारों की अवधारणा का प्रतिपादन किया। यदि मनुष्य का संपूर्ण रूप में सरलता से अध्ययन नहीं किया जा सकता, तो मानव के अस्तित्व के विभिन्न वर्गों को समष्टि से निकालकर अलग अलग समझा जा सकता है। वेबर ने मनुष्य को उसकी संपूर्णता में समझने में जो बाधा थी, उसका समाधान किया। परंतु एक गंभीर प्रश्न शेष रह जाता है कि क्या मनुष्य इन भागों का योग मात्र है। इतिहासवादी इससे असहमत हैं। वेबर की मुख्य रुचि समाजशास्त्र में थी, जिसमें मनुष्य का सामाजिक जीव के रूप में अध्ययन किया जाता है। इस दिशा में भी उसे मार्क्स की विचारधारा मनुष्य की वर्गों के आधार पर व्याख्या से प्रोत्साहन मिला। वस्तुतः जर्मनी में इतिहास ही समाजशास्त्र बन जाता है। समाजशास्त्री मनुष्य के समय के प्रवाह से पृथक करके देखता है, वह समय को स्थिर कर देता है। यही कारण है कि उसका अध्ययन यथार्थ से दूर हो जाता है। मनुष्य समय के प्रवाह में जीता है और उसके जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह गतिशील है। मनुष्य ऐतिहासिक है और इतिहास मनुष्य का अध्ययन है। डिल्थे के एक पक्ष तक ही अपने अध्ययन को सीमित रखने के कारण सफल नहीं हो सका। क्योंकि वह उसके पूर्ण को नहीं पकड़ पाया। इतिहास कल्पना नहीं है, यह वास्तव में क्या घटा इसे समझने का प्रयास है। इस महान बौद्धिक क्रांति ने 19वीं सदी के यूरोप की सरल मान्यताओं को चुनौती दी। प्रकृति अब विवरणीय नहीं रही और मनुष्य की क्रियाओं को अब संदेहपूर्ण दृष्टि से देखा जाने लगा। मार्क्स ने कहा कि मनुष्य के विचारों और प्रक्रियाओं को आर्थिक संदर्भ में समझना चाहिए, और फ्रायड ने इससे आगे कहा कि सदैव कोई निश्चित कारण इन क्रियाओं के साथ नहीं होता, अपितु मनुष्य कई ऐसे कार्य करता है जिसका निर्देश उसे अचेतन से मिलता है, वह स्वयं अपने कार्यों को नहीं समझ पाता। मनुष्य के कार्यों का वर्णन मात्र अब अर्थपूर्ण नहीं रहा। पाश्चात्य मनुष्य ने विश्लेषण के युग में प्रवेश किया। अब यह मानता तिरोहित होने लगी कि पाश्चात्य मनुष्य निरंतर संस्कृति के उच्चतर स्तर पर पहुंच रहा है। जापान की रूस पर विजय ने इस विश्वास को हिला दिया कि यूरोप की शक्ति सर्वोपरि है। समाप्त।